पृष्ठ संख्या 51, भारत में सामाजिक न्याय का आरक्षण, जातिगत आरक्षण। डॉक्टर गीता ओझा, सह प्राध्यापक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स के अनुसार किसी समाज को तभी समतावादी माना जा सकता है जबकि वह समानता और एकता के सिद्धांतों पर आधारित हो और वहाँ मानवाधिकारों का सम्मान होता हो। सामाजिक न्याय की धारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। आज संपूर्ण विश्व के नागरिक अपने सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। जब तक सामाजिक समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट नहीं होगी, मानवाधिकारों की अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण नहीं करेगी। मानवाधिकारों को सामाजिक गतिशीलता का आधार माना जाता है। मानव जाति का सम्मान और उसकी रक्षा से ही मानव समाज का अस्तित्व बना रह सकता है। अतः सामाजिक न्याय कायम किए बगैर हम मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते। बर्टोल्ड ब्रेख्त ने कहा है कि जिस तरह मनुष्य को रोजी रोटी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह न्याय की जरूरत भी रोज की ही तरह है, जबकि न्याय की जरूरत दिन में कई बार हो सकती है। सच है कि जीवन में और दुनिया में मनुष्य के मनुष्य होने के रूप में मूलभूत मानवीय अधिकारों के हनन का सिलसिला बहुत पुराना है। कभी रंग के आधार पर, कभी जाति और कभी कथित वंश परंपरा के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करता आया है। रोमन का नंबर 2, भारत में तो मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का रिकॉर्ड बहुत खराब है। मूल रूप से मनुवादी वर्ण व्यवस्था ही मनुष्यता के खिलाफ इतिहास का सर्वाधिक क्रूर और अंतरम तक बेचैन कर देने वाला षड्यंत्र है। मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित कर देखा जाए तो मनुष्यता का सबसे अधिक अपमान और क्या हो सकता है। लेकिन इसी भी जीवंत समाज में अन्यान परीक्षण और सुधार के लिए गुंजाइश बची रहती है। हमारा समाज भी जीवंत समाज है और इसलिए यहाँ भी समय समय पर चेतना जगाने वाले सामाजिक आंदोलन द्वारा आज हम एक लोकतंत्र के रूप में दुनिया में सम्मानजनक ढंग से रह रहे हैं। भारत में सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वह जातिवाद के खिलाफ है, क्योंकि सामाजिक अन्याय जाति प्रथा ने पैदा किया है। मीरा कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सामाजिक न्याय राजनीति का सवाल नहीं है बल्कि मिशन है। सामाजिक न्याय का आशय आमतौर पर समाज में लोगों के बीच समता, एकता तथा मानवाधिकार की स्थापना करना है। भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय की लड़ाई आम जनता और शासन तथा प्रशासक वर्ग के मध्य होती आई है। यही कारण है कि इसे हम कबीर की वाणी, बुद्ध की शिक्षा, महावीर की दीक्षा, गांधी की अहिंसा, साईं की सीख, ईशा की रोशनी तथा नानक के संदेश में पाते हैं। हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो धीरे धीरे बदलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। इसके बाद समानता, असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद तथा रूढ़िवादिता समाज में उत्पन्न हुए, जिसका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया गया और फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर भारत को लंबी अवधि तक पराधीन रखा गया। लेकिन लोगों की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने पर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना, व्यक्ति का शासन, सोच की स्वतंत्रता, भाषण की आज़ादी, संघ बनाने की स्वतंत्रता और इन सब के लिए सर्वोच्च कानून की स्थापना की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को मसौदा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संविधान सभा की कई बैठकों के बाद भारत के संविधान की रचना की गई, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें सामाजिक न्याय को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। यह दुनिया का सामाजिक न्याय को दर्शित करने वाला एक प्रामाणिक अभिलेख है। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी, समस्त नागरिकों को तथा जीवन जीने की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। पृष्ठ संख्या 53 रोमन का नंबर 3। अनुच्छेद 340 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाने के पीछे मंशा यही थी कि यहां सभी को सामाजिक न्याय मिले, अर्थात सरकारी उपायों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की दशा सुधारी जाए। उन्हें अनुदान देने का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के जरिए संविधान ने पिछड़ गए समुदाय के लिए विशेष विकास का प्रावधान किया है। यहाँ विकास के तत्व को जाति के तत्व के रूप में अलग नहीं माना गया, बल्कि माना गया कि देश के समरूप विकास के लिए कुछ पिछड़ गए जातीय समूहों का विशेष विकास जरूरी है। इसलिए बाद में कालेलकर आयोग और मंडल आयोग का गठन इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया। इस देश दुर्भाग्य रहा है कि इस समय अनुच्छेद को लागू करने पर जातिवाद के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इससे भी अधिक दुर्भाग्य यह रहा है कि इस विवाद को लेकर पैदा हुए तनाव का दुरुपयोग दोनों पक्षों के कुछ सत्ता लोलुप नेताओं तथा समाज के अन्य क्षेत्रों के कुछ लोगों ने किया। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस संवैधानिक प्रावधान का सहारा सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु लिया। इसका उद्देश्य भी समाज के पिछड़ गए हिस्से का विकास करना था। इस आरक्षण के कारण समाज में जातीय तनाव पैदा किया गया। आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दबाव समूह बन गए और अपने पक्ष में भुनाना भी प्रारंभ कर दिया गया। 1978 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने नौकरियों में पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण का प्रावधान किया था। यह प्रावधान 12% अति पिछड़ों और 6% अन्य पिछड़े समूहों के लिए था। इस आरक्षण पर राजनीति का खेल हावी हो गया। जब लालू प्रसाद ने मजबूत पिछड़ी सरकार की जातियों का ही सशक्तिकरण किया, जिसका लाभ राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में यादवों को ही मिला, तदैव। इस देश में आमतौर पर जब किसी नेता को जातीय वोट बैंक का ठोस आधार मिल जाता है तो वह समाज में विकास को भूल जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आज की यूपी सरकार में है। एक दलित वर्गीय मुख्यमंत्री के लौह नेतृत्व में चलने वाले राज्य में सामाजिक न्याय गायब है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ी पायदान पर खड़े लोगों का उत्पीड़न कम हो रहा है और वे ही ताकतें उत्पीड़न की भूमिका में हैं जो पहले ही भूमिका में रही थी। सच तो यह है कि दलित हित विचार मात्र एक अवसरवादी ध्रुवी है, जिसके इर्द गिर्द एकत्रित होकर वे एक राज्य की भागीदारी कर सकते हैं। जाति विहीन समाज की स्थापना के मूल अंबेडकरवादी विचार के स्थान पर सत्ता का विचार प्रमुख चला आया है। इसलिए आरक्षण चाहे कितना ही पवित्र उद्देश्य से लाया गया हो, इसका प्रयोग नितांत निराशावादी परिणाम दे रहा है। जरूरत है समाज की समरसता को बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय का विस्तार करते हुए। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि यह नारा आज भी सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, सब जाति सब समाज, जाति महान, आडवाणी 2008। इसलिए सकारात्मक कार्यवाही में ऐसे सभी उपायों का स्वागत किया जाना चाहिए जिनका उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर अधिकार संपन्न बनाना है जो ऐतिहासिक कारणों से पिछड़े रह गए हैं। रोमन का नंबर 4। आज जरूरत है संविधान में सामाजिक न्याय को पुनः परिभाषित करने की, जो सही मायने में केवल आर्थिक रूप से अति पिछड़े हुए दलित, जनजातीय पिछड़े वर्ग और सवर्ण सहित समाज की हर जाति को मिले, जिसमें जाति बंधन न हो, क्योंकि सवर्ण दो जोन की रोटी का खुद जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उस सवर्ण पर अच्छे संपन्न दलित और पिछड़े के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण का बोझ क्यों लादा जाए? क्या यह बदला लिया जा रहा है कि उनके पूर्वजों ने कभी अत्याचार किए थे? जाहिर है कि परदादा के कर्मों का फल उनके परपोते को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर अगर कुछ आंकड़े की बात की जाए तो दिल्ली में कम से कम 50 सुलभ शौचालय हैं, जिसके साफ सफाई का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश की उन गांवों से आए हैं जहां दलित आबादी 65 से 70% है। दिल्ली के पटेल नगर चौराहे पर खड़े रिक्शे वाले में अधिकतर ब्राह्मण हैं। तमिलनाडु में आरक्षण लगभग 70% तक पहुंच जाने के कारण ज़्यादातर ब्राह्मण तमिलनाडु से पलायन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल 600 सीटों में से सिर्फ चुनिंदा 9 से 10 विधायक ही ब्राह्मण हैं, बाकी पर यादवों और दलितों का कब्जा है। पृष्ठ संख्या 55। कश्मीर से 4 लाख पंडितों को खदेड़ा जा चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर राज्यों में ब्राह्मणों की 40 से 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारी की तनख्वाह आज भी 300 रुपये है, जबकि मंदिर के स्टाफ का वेतन न्यूनतम 2500 रुपये है। भारत सरकार 1000 करोड़ मंदिरों में और मस्जिदों में इमामों के वजीफे देती है और लगभग 200 करोड़ की सब्सिडी हज के लिए अलग से, लेकिन उनके पास गरीब ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं है। कर्नाटक सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य के मुसलमानों की औसत मासिक आमदनी 797 रुपये, अनुसूचित जातियों की मासिक आमदनी 680 रुपये, जबकि ब्राह्मणों की सिर्फ 537 रुपये। असल समस्या यह है कि दलित अन्य पिछड़े वर्ग और मुसलमान के वोटों को मिलाकर कोई भी राजनीतिक पार्टी आराम से सत्ता में आ सकती है, फिर क्यों कोई ब्राह्मण की फिक्र करे? आज 90 से 95% अंक लाकर भी प्रतिभाशाली ब्राह्मण युवक किसी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर ही खड़ा खड़ा सामाजिक न्याय के नाम पर अपने 50-60% अंक प्राप्त करने वाले मित्र को आगे जाता देख रहा है। यह है आरक्षण के नाम पर सामाजिक न्याय का सच। प्रतिभा की यहाँ कोई कद्र नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य जो पिछड़े हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उन्हें आगे ले आना है। यह तो ठीक है, पर केवल किन्हीं जाति विशेष के लोगों के लिए हो, यह ठीक नहीं है। सच तो यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने संबंधी उपरोक्त संवैधानिक उपबंध केवल संविधान के आईना में छवि बनाकर रह गए हैं। लोगों का जीवन स्तर निम्न है, इसमें गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा तथा अराजकता व्याप्त है। आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय आज जनता से कोसों दूर है, जबकि आरक्षण पिछले 62 वर्षों से जारी है। आज हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त करना आम जनता के लिए परलोक की कहानी है। सामाजिक न्याय चुनावी मरुस्थल में मृत तृष्णा के नाम में जनता को दिखाई दिया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों में चुनावी घोषणा पत्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने के नारे से भरे रहते हैं, लेकिन कोई भी दलगत, जातिगत तथा व्यक्तिगत राजनीति से उठकर देश हित में न्याय प्रदान नहीं कर पाता है। बेहतर विकल्प की तलाश करते भारतीय समाज को आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और सुसंगत विकास के लिए नए राह पर चलने की जरूरत है। जातियां सामाजिक पहचान की सूचक भले ही हों, लेकिन जातिवाद को भावी भारत की जड़ों में ही मिटा देना होगा। इस संदर्भ में आने वाले समय में इस नारे को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, सब जाति महान, सब जाति समान। पृष्ठ संख्या 56। संदर्भ लाल कृष्ण आडवाणी, 2008, सामाजिक न्याय, समानता और हिंदू समाज में सुधार, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिया गया भाषण। कुमार गौरव, 2011, सामाजिक न्याय भी हो दायरे में, जागरण, 21 दिसंबर। किशोर सुरेंद्र, 2012, विकास का ही हिस्सा सामाजिक न्याय, समय लाइन, 12 फरवरी गुप्ता यूके 2012 भारत का संविधान और सामाजिक न्याय 4 जनवरी चिपलून का सुरेश 2011 गरीब मध्यम वर्गीय ब्राह्मणों सामाजिक न्याय के लिए कुर्बान हो जाओ हिंदू 13 अप्रैल तेजिंदर 2011 सामाजिक न्याय और हमारा संसार देशबंधु 14 दिसंबर